आज का टॉपिक है माया का एक और रूप है और वो है रिस। कई बार बाबा कहते हैं कि रिस करो रिस नहीं करो, और रिस शब्द बाबा का अपना है क्योंकि कोई भी डिक्शनरी में इसका अर्थ नहीं मिलता है। तो रेस करना वो तो हेल्थी कंपटीशन है, जैसे बहुत प्रकार की दौड़ होती है, बहुत प्रकार की कंपटीशन होती है, उसमें दिखाई देता है कौन कौन हमारा हरीफ है। लेकिन ये जो रेस है उसमें मालूम ही नहीं पड़ता है, बहुत गुप्त है, और ऐसी गुप्त है कि कभी कभी हमें भी नहीं पता पड़ता है कि हमारे हरीफ कितने हैं, कि हमारे पीछे कितने हैं, इतनी गुप्त है। इसलिए बाबा कहते हैं कि रिस नहीं करो, और ये जितने भी विकार है वो तो फिर भी मालूम पड़ता है, लेकिन ये जो ऐसा है जो बहुत परेशान भी होते हैं करने वाले और करते हैं जिसकी वो भी परेशान हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि व्यक्ति जब भी जिसको ऐसे रिस करने की आदत होती है, वो उसके आसपास वाले या तो जिसके साथ उसका कनेक्शन है या कनेक्शन नहीं भी है, उसको कहते हैं ना कि दौड़कर उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो तोड़कर मुकाबला करते हैं। कैसे तोड़ते हैं वो? क्योंकि उसको अंदर से खोखला बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, उसका जब भी वो व्यक्ति आगे जाता है तो उसका परचिंतन करता है, निंदा करते हैं। दूसरा है कि उसको बार बार टॉन्टिंग करते हैं और उसकी बातें ऐसी फैलाते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं, उसकी कमियां निकालते हैं, और बहुत ही प्रकार की उसकी हवा फैलाते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है वो ऐसा है, और लोगों को गुमनाम भी कर देते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे को कहते हैं भाई ये ऐसे देखो ये ऐसा है वैसा है। तो भी किन किन बातों की ईर्ष्या व्यक्ति करता है, व्यक्ति ईर्ष्या तो करता है जिसको रिस कहते हैं। तो सबसे पहले तो है साधनों की, स्थूल साधनों की वो कंपैरिजन करता है कि उसके पास बहुत कुछ है, देखो वो तो बहुत आगे जा रहा है क्योंकि उसके पास साधन बहुत है, उसके पास फोर व्हीलर है, उसके पास टू व्हीलर है, उसके पास अच्छी अलमारियां हैं, हमारे पास तो अलमारियां है ही नहीं। जब उसके कमरे में गए तो उन्होंने देखा, अरे उनके कमरे में तो कितना सारा है, वो व्यक्ति तो आराम से रह सकता है, वो तो अकेला है, हम तो बहुत सारे साथ में रहते हैं। तो ऐसे कंपैरिजन करते हैं। फिर अगर उसने कभी अच्छा जैकेट पहन लिया तो बस देखो जैकेट कहाँ से आया होगा, उसको तो है ना टेलर ठीक करके ही देता है, तैयार करके देता है, और हम तो कितना चक्कर काटते हैं, हमारे को तो सिलाई नहीं करके देता है। तो कपड़े की कंपैरिजन करते हैं, फिर अलमारियों की कंपैरिजन करते हैं, हर प्रकार की कंपैरिजन करते हैं और जलते रहते हैं, ईर्ष्या करते हैं। फिर दूसरी बात है कि ज्ञान युग में कहते हैं कि हम तो देखो जब भी आए कितना हम ज्ञान में योग में बहुत आगे थे, और ये व्यक्ति आया है ना तो आप देखो सारे दिन ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन दो चार एक एक आध घंटा भी वो बैठ नहीं सकता है, हम तो हिले विले बिना बैठ सकते थे, और ये व्यक्ति देखो उसका योग देखो एक घंटे में तो थक जाता है, और हम घंटों का घंटों बैठते थे योग में, और ये देखो कान में ईयरफोन लेकर के बैठ, क्योंकि उसके पास है नहीं, तो साधन नहीं है तो भी उसको अंदर से तकलीफ तो होती है, और कभी कभी उस व्यक्ति को कोई गिफ्ट भी दे के जाता है और उसको ध्यान में आता है तो फिर जलता है कि ये देखो ये तो कितना बड़ा महान बन गया है, उसको गिफ्ट देते रहते हैं और ड्राई फ्रूट का पैकेट देते ही रहते कोई। तो हर प्रकार की कंपेरिजन, हर प्रकार का उसको मतलब कि उसमें इतनी गहरी रिस होती है कि व्यक्ति को अंदर से बहुत ही जलन होती है। फिर है सेवा में, जब ये आते हैं तो कहते हैं कि अभी देखो ये सेवा करते हैं ना, तो अभी एक घंटा दो घंटा सेवा की और वो घूमने निकल गए, और हम तो देखो सुबह से रात तक लगे ही रहते हैं, हमको कोई पूजने वाला ही नहीं है, और ये तो देखो उसको तो कितना ओम शांति सब करते रहते हैं। तो सेवा में भी कंपेरिजन करते हैं, लेकिन मालूम नहीं है, कहीं तो नए होते हैं पुराने की भी कंप्लेन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि देखो ये तो बैठे ही रहते हैं और हमको दौड़ाते ही रहते हैं, हमको कहते हैं यहाँ जाओ वहाँ जाओ, और ये खुद देखो, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये जो पुराने उन्होंने तो बहुत सेवा की है, बहुत टाइम अपना दिया हुआ है, अभी वो आराम से बैठे हैं। फिर जब कोई व्यक्ति को अक्सर करके वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति को नाम मान शान मिलता है, तो नाम मान शान मिलता है ऐसे थोड़ी मिलता है, बहुत मेहनत करते हैं तभी उसका नाम होता है, मान होता है, शान होता है, लेकिन वो इसकी उन्नति, जो किसी की उन्नति हो रही है, किसी का नाम अच्छा हो रहा है और किसी का बहुत ही सब सब जगह उसकी डिमांड करते हैं, तो देखने को मिलेगा कि सबसे पहले उसकी लोग है ना उसकी बहुत ही रिस्क करेंगे और उसके लिए ऐसी ऐसी बातें बताएंगे, देखो क्लास तो बड़े बड़े कराते हैं, धारणा तो है नहीं, प्रैक्टिकल में तो कुछ भी नहीं दिखता है, बस यहाँ की बातें वहाँ की बातें करते रहते हैं, स्टोरियाँ सुनाते रहते हैं, ऐसी बातें करते हैं। अभी जो प्रैक्टिकल है ना जो सुनते हैं वो बताती हूँ, हाँ इसमें कोई भी अब प्रैक्टिकल नहीं ऐसा नहीं है। तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो कहने का मतलब कि वो खुद नहीं करा सकते हैं, खुद में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए वो ऐसी इस प्रकार की जेलेसी करते हैं। और फिर उसको वो जो आगे बढ़ रहा है उसकी उन्नति हो रही उसमें रोड़ा कैसे डाला जाए, उसकी युक्तियां करते रहते हैं, षड्यंत्र, उसको षड्यंत्र कहते हैं, वो करते रहते हैं, या उसमें किसी की मदद भी लेते हैं, ऐसे उनके ग्रुप बना हुआ होता है कि ये आगे जा रहे हैं उनको अब थोड़ा नीचे करना है, मतलब इस प्रकार से ये जो रीस होती है ना बहुत गहरी है, ऐसे तो विकार तो बहुत ही बड़े हैं, लेकिन ये जो है ना चोटी दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो व्यक्ति को तोड़ देती है, व्यक्ति को परेशान भी कर देती है। तो व्यक्ति को नाम मान शान मिलता है, व्यक्ति आगे जा रही है, तो आगे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे कि देखो आपको कितने अच्छे, और फिर पीछे दो चार लोगों के आगे ऐसी बातें करेंगे, तो हम पहचान नहीं सकते हैं कि व्यक्ति कैसा है। कहते हैं ना भगवान को पहचानना तो बहुत सहज है, लेकिन मनुष्य को पहचानना बहुत मुश्किल है, और गहराई है मनुष्य में। तो उसमें एक ऐसे सभी ने सुनी हुई है कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति था जिस बहुत भला भोला था, और व्यक्ति इतना अच्छा था और ऐसे बहुत तपस्या नहीं करता था, लेकिन फिर भी भगवान में बहुत श्रद्धा रखता था और आगे चलता रहता, गरीब था। तो एक बार भगवान को लगा कि ये बहुत ही अच्छा है, तो उसको वरदान मांगने के लिए बोला, तो उसने भगवान ने उसको दर्शन दिया और बोला कि अब वरदान मांगो, तो वो कहता क्या मांगू मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन बहुत मेहनत करता था और बहुत ईमानदारी से करता था, तो भगवान ने उसको उसको धन धान्य से और सभी जगह से भरपूर कर दिया। अभी उसके साथ साथ एक उसके बाजू में एक पड़ोसी रहता था, तो वो कहता था कि इनका तो इतना ये हो गया, उसको माला माल कर दिया। तो उसने उसको पूछा, वो भला बोला था, उसने बोला मैं तो ऐसे भगवान का मुझे दर्शन हुआ, तो उसने बोला कहाँ हुआ, तो उसने सब कुछ बता दिया। तो फिर उसने बोला मैं भी थोड़ी भगवान की बंदगी कर लूँ, उसकी तपस्या कर लूँ, और तपस्या करने के बाद मुझे भी वरदान मिल जाए। तो उसने थोड़ी तपस्या की, भगवान ने उसको दर्शन दिया, तो दर्शन दिया तो उसने कहा कि अब भगवान ने कहा कि आप वरदान मांगो तीन, तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है, लेकिन आप आपको जो मिलेगा ना उससे तुम्हारे बाजू वाला है ना उसको डबल मिलेगा। तो उसने सबसे पहले वरदान मांगा कि मेरी एक आंख है ना खत्म हो जाए, तो दूसरे की दो आंखें खत्म हो जाएगी ना, है ना, फिर दूसरा कहता है कि दूसरा वरदान है कि मेरा एक हाथ खत्म हो जाए, एक हाथ टूट जाए तो दूसरे का दो हाथ टूट जाएगा, और तीसरा बोला कि मेरा एक पांव खराब हो जाए तो दूसरे का दो हो जाएगा। तो ये है रिस। अरे अपना खुश नहीं हो सकते हैं तो दूसरे का आगे क्या हुआ है तो समझ सकते हैं ना कि परेशान हो जाएंगे, है ना। तो भगवान ने वरदान तो दिया लेकिन देखा है व्यक्ति तो कैसा है, तो उनको तो पता ही था कि ये सब मांगने के लिए ही आएगा। तो कहने का मतलब वरदान भी ऐसे प्रकार से मांगते हैं कि हमारा जैसे कोई पतंग चगाता है ना, तो पतंग उसके हाथ में कट जाती है और दूसरे के हाथ में आती है, तो उसके पीछे दूसरा दौड़ता है, तो वो इतना दौड़ता है ना, लेकिन अभी उसको लगता है कि मेरे पास आके ले जाएगा तब फाड़ देता है। तो अपने हाथ में ना आए तो दूसरे के हाथ में भी नहीं आना चाहिए, ये है रिस। फिर दूसरा है कि जब तो मतलब कि ऐसी ऐसी मतलब कि रिस करते हैं। फिर पोस्ट पोजीशन में बड़ों के साथ किसका कनेक्शन अच्छा होता है तो वो उसके पास जाना पड़ता है, तो क्या कहेंगे, देखो ये चक्कर काट रहा है, उसको कुछ चाहिए, उसका कनेक्शन इतना है, इसका हाथ इतना लंबा है कि वो जो चाहे उसको मिल सकता है, और हम तो ऐसे नहीं है जो आगे पीछे घूमे किसी के, तो इस प्रकार की भी बातें करते हैं। तो पोस्ट पोजीशन जो बड़ों के साथ है वो तो अच्छा ही है ना, क्योंकि बड़ों के साथ रहना, बड़ों के साथ बातें करना, बड़ों से शिक्षा लेना, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे मतलब कि उसी वो नहीं पहुंच पाता, वो नहीं जा सकता है, और बड़ों के साथ कौन जा सकता है, जो सच्चा होगा वो जा सकता है, लेकिन जो झूठी झूठी बातें करेंगे वो तो जा नहीं सकता है। तो दूसरी बात है कि पहले जिम्मेवारी लेता है कोई, उसको बड़े जिम्मेवारी देता है कि तुमको ये काम करना है, ये नहीं करना है, तो जब जिम्मेवारी बड़ी बड़ी जिम्मेवारी देता है तो बहाना बताता है कि मैं नहीं करूँगा, ये करूँगा, और जब दूसरे को यही व्यक्ति कहता है कि मैं तो नहीं कर सकता है, आप करोगे, उसको बहुत रिक्वेस्ट करता है, फिर उसको भेजता है बड़ों के पास, तो बड़े उसको जिम्मेवारी दे देता है। वो है छोटा लेकिन बहुत अच्छी रीति से निभाता है, जिम्मेवारी करता है और फिर आगे बढ़ जाता है। फिर उसको ये जेलसी हो जाती है कि अरे देखो ये तो मैंने ही उसको सुझाया था, मैंने ही उसको बड़ों के पास भेजा था, मैंने ही सब कुछ किया था, तो वो मेरे कारण आगे बढ़ गया है। लेकिन ये नहीं समझता है कि जब भी आपको भी तो जिम्मेवारी दी थी, आप ही तो निभा सकते थे लेकिन आपने नहीं किया। तो बाबा है ना चांस सबको देता है, ऐसा नहीं किसी को देता है किसी को नहीं देता है, लेकिन कोई चांस लेकर चांसलर बन जाता है और कोई चांस गवा कर, कोई चांस गवा कर फिर ऐसे चांस बिना चांस के रह जाते हैं। तो ऐसे ये जो रीस है ना ये इतनी इतनी खराब है कि आप हम सभी को अनुभव भी है, हम किसी करते भी है और हमारी भी कोई करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसमें से अलग है। तो बाबा कहते हैं कि उसको बचने का है, अभी बचने का कारण क्या है, अभी उससे बचना है तो क्या करेंगे, अभी हमारे में है, किसी कोई हमारे पर करते हैं तो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है ना, लेकिन बहुत करते हैं तो इसमें से उभर नहीं जाते हैं। कोई बहुत ग्लानी करते अली ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं और हमारे तक जब ये बात आती है कि अरे मेरी ऐसी बातें करता है तो मन दुखी तो हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, और हमको अंदर से उस व्यक्ति से बात करना तो दूर बात नहीं कर सकते हैं, बात करते हैं तो भी मालूम है कि वो क्या कहेंगे, कुछ न कुछ टॉन्ट करेंगे, कुछ न कुछ अपशब्द बोलेंगे, अपमान करेंगे, और बहुत बहुतों के बीच में भी वो कुछ बोल देंगे, इसलिए हम थोड़ी उनको उनसे नहीं बात करते हैं बराबर। तो जब भी ऐसी बातें होती है तभी हमारे मन में आता है कि इसका क्या किया जाए, जब भी कोई ऐसा करता है कि ये हमारे पीछे पड़ा ही रहता है। बाबा कई बार कहता है कि सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है, लेकिन कभी लगता है ऐसा पार्ट उसका हमारे साथ क्या कनेक्शन होगा, हमारे हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है, हमने उसका कुछ किया ही नहीं है, नुकसान ही नहीं किया है, तो भी क्यों ऐसा। और बहुत प्यार से उनसे बात करने की, प्यार से व्यवहार करने की जब बातें करते हैं तभी भी वो उल्टा ही लेते हैं, मतलब कि कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हैं। अच्छी बात बताएंगे तो भी वो समझेंगे कि ये अच्छी बात उसको लगेगी ही नहीं। तो इस जब ये ऐसी बातें होती है तभी इसका निवारण के लिए क्या करना चाहिए, आप तो करते होंगे ना, बताओ। तो सबसे पहले है कि हर किसी का पार्ट अपना अपना है। बाबा ने कहा कि ये जो पार्ट है ना सभी में, वो अपना अपना एक पार्ट होता है, और उसका पार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी के पार्ट को हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कैसेट जो है ना उसमें वो भरा हुआ ही है, और भरा हुआ है उसको हम तो निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन उसको देख करके अपनी अपने को तो हम ठीक कर सकते हैं कि भाई उसका पार्ट ही ऐसा है। हम कुछ भी कहेंगे लेकिन उसका पार्ट ऐसा ही है, तो वो तो कभी ये पार्ट उसको बजाना ही है तो बजाएंगे ही पार्ट। तो बाबा ने कई बार कहा है कि यहाँ हमारा एक शिक्षक नहीं होता है, बहुत सारे शिक्षक होते हैं, है ना। हमें जो पता नहीं पड़ता है वो हमको बताता है, तो हमें अपने को चेक करना है कि उस बारी मेरे को क्या करना है। अगर वो बात उसके उसने जो हमारे को कह रहा है उसमें 1% भी अगर सच है तो अपने को थोड़ा देखना है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे में कोई ऐसी कमी है जिसके कारण इस व्यक्ति को ऐसा चांस मिलता है। तो हमें अपने को पहले देखना है, अगर हम सही है तो फिर हमको किसी की भी परवाह नहीं करनी है, किसी की भी परवाह नहीं करनी, किसी की कितनी भी निंदा हो जाए, कितना भी हमारी मतलब ग्लानी कर दे, कितना भी परचिंतन कर दे, लेकिन हमें उससे मतलब कि अपने को संभाल लेना है। तो सभी का अपना अपना पार्ट ऐसा है, जो बाबा ने कहा थे गुलदस्ता है, झाड़ है, झाड़ में जो गुलदस्ता होते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं तो अच्छा लगता है। तो ये भी एक पत्ते होंगे तो कांटे होंगे या कुछ भी होंगे, कहने का मतलब कि गुलदस्ता होता है उसमें अलग अलग वैरायटी होती है तो भी अच्छा लगता है, इसलिए हमें उसको गौर नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है कि जो बाबा ने कहा है कि ये हमको लक्ष्मी नारायण का जो बाबा ने कहा एक लक्ष्य दिया है कि नरसे नारायण बनना है ना, तो नरसे नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी बनना है, वो तो सभी को लक्ष्य दिया ही है कि नरसे नारायण नारायण बनना है, लेकिन बाबा पढ़ाई तो यही पढ़ाते हैं और एम ऑब्जेक्ट भी यही दिया है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं कि यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, नंबरवार पोस्ट पोजिशन है, नंबरवार पोस्ट पोजिशन है तो राजधानी में तो सब आएंगे, राजधानी में तो राजा भी है, प्रजा भी है, दास दासी भी है, दास दास का भी मतलब नौकर का भी नौकर होता है, तो नौकर का भी नौकर होता है। तो कहते हैं ना कि इतने सारी राजधानी में जो भी जैसा भी करेंगे उसको उसी अनुसार पद मिलेगा। तो ऐसा इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी यहाँ अगर कोई ऐसा संस्कार लेकर के काम करता है तो उसको ऐसा ही पद मिलेगा। तो सभी का अपना अपना पार्ट है, तो हमें ये स्वीकार कर लेना है कि हमारा पार्ट उसको देख करके हमारे पार्ट को विचलित नहीं करना है। जैसे ड्रामा में होता है ना, एक राजा होता है और एक नौकर होता है, एक चोर होता है, सभी का अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। और राजा जो बनने वाला है वो तो या तो राजा है, वो तो नौकर का पार्ट तो नहीं करेगा ना, और चोरी भी नहीं करेगा। तो इसलिए राजा बनने वाले का संस्कार अपना ही होता है, क्योंकि यहाँ भी हम देखते हैं कि कोई कोई व्यक्ति का इतना अच्छा संस्कार होता है, हमें यहाँ लगता है कि वो देवता ही है, ऐसा संस्कार भी है। और कोई कोई का ऐसे पोस्ट पोजीशन भी अच्छी, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऐसा संस्कार होता है हमको लगता है सबसे मांगने वाला होता है, तो फिर उसका भी तो संस्कार अनुसार कर्मों अनुसार अपना पद मिलेगा। यहाँ कोई डिपार्टमेंट के इंचार्ज बन गए या कोई बड़े बन गए, वो जो ऑर्डर करता है, राजा के तरफ बैठता है, राजा के तरफ रहता है, तो वो राजा वहां बनेगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति का अपना अपना पार्ट। इसलिए बाबा कभी कभी क्या कहता है पता है, अंत में साक्षात्कार हो जाएगा, और साक्षात्कार जब हो जाएगा तभी जिन्होंने अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया है या आपको जो टाइम मिला है उस टाइम को सफल नहीं किया है उसको रोना आएगा। दुनिया वाले तो रोएंगे लेकिन यहाँ तो कौन सी आंसू, खून की आंसू बहाएंगे। तो बाबा कहते कि अभी समय हमारे पास इतना है नहीं, समय बहुत कम है और उस समय में हमें अभी ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि कौन हमारे पीछे है कौन हमारे आगे, हमें अपना ही करना है। इसलिए हम अपना अपना पार्ट को अच्छी रीति से निभाए और जो पार्ट हमारे को जो पार्ट दिया है किसने, किसी ने अपना पार्ट चॉइस नहीं किया है, अभी आगे जाके हम क्या करेंगे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि हमें राइट जाना है या रॉन्ग जाना है, वो तो हमारे हाथ में है ना। तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और पार्ट को अच्छी रीति बजाना है। दूसरा है कि हर किसी को ड्रामा में अपनी अपनी तकदीर भी है। तकदीर माना कोई कोई व्यक्ति है ना उसकी तकदीर ऐसी है जो आते ही उसको मतलब कि बहुत कुछ मिल जाता है और कोई कोई व्यक्ति है ना इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको बहुत समय के बाद मिलता है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि जो अभी आया है उसको मिल गया है, वो तकदीर तो है लेकिन फिर भी उसको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ हमने देखा है कि दादियों ने इतनी मेहनत की है और दादियां अभी इसी स्टेज पर पहुंची जिसको अभी सुविधाएं मिलती है, सभी प्रकार की व्यवस्था मिलती है, लेकिन कोई अभी आया हुआ ब्रह्मा कुमारी है अगर देखे कि देखो दादियां तो फ्लाइट में घूमती है, इधर घूमती, कोई इसके आगे पीछे कितने लोग हैं लेकिन उसको मालूम नहीं उसने कितनी तपस्या की है। लेकिन अभी अभी आने वाले तो जो बहनें होती है भाई होते हैं उनको ऐसा ही लगता है कि यही जीवन है हमारा, खुश जीवन कि सब कुछ मिल जाता है। लेकिन वो मिल जाता है उसके बाद आपको रिटर्न भी देना पड़ता है, अगर रिटर्न नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो हर किसी का ड्रामा में अपनी अपनी तकदीर भी होती है लेकिन तकदीर मिलने के बाद भी पुरुषार्थ करना होता है। कोई व्यक्ति को बहुत कुछ मिला है लेकिन वो अपने ऐसे अभिमान में ही रहेंगे तो उसका पुरुषार्थ नील हो जाएगा। तो तीसरा है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी पार्ट चेंज नहीं कर सकता है। कोई की तकदीर में बहुत कुछ है तो आप उसके छीन नहीं सकता है, भगवान भी नहीं छीन सकता है, और जिसके नसीब में कुछ भी नहीं है ना उसको भगवान भी नहीं दे सकता है। ड्रामा में हर सीन बदलती है, हम देखते हैं कि ड्रामा में कितनी सीन बदलती आई है हम सभी को पता है ना। पहले तो बाबा का ही देखो, साकार में थे है ना, साकार में थे, उसके बाद भी देखो चलते चलते कहां पर पहुंच गए। अभी आने वाले को तो लगता है यही जो वीडियो में देखते हैं वही भगवान है, उनको ये साकार में जो मिलते थे वो अनुभव अव्यक्त में मिले उसको नहीं है। वो कितना गुणगान करते हैं हमको, बाबा इस प्रकार से खिलाते थे, बाबा हमको इतनी पालना करते थे, सिर्फ हम सुनते हैं लेकिन उन्होंने पाया है। और अव्यक्त मिलन में भी जिन्होंने पाया है उसको मालूम है, लेकिन अभी अभी जो आने वाले हैं उसको मालूम नहीं है। वो तो ये देख के खुश होते हैं कि देखो हम बाबा को मिल रहे हैं, बाबा इतनी मतलब कि ताकत भी देते हैं, उसको साक्षात्कार भी कराते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी वो साकार मिलन, अव्यक्त मिलन और अभी वीडियो मिलन अलग अलग बातें हैं। तो ड्रामा में हर सीन बदलती है, इस ड्रामा में कुछ भी परमानेंट नहीं है, कोई भी सीन परमानेंट नहीं है। अगर कोई दुख भी आए वो भी परमानेंट नहीं है, सदा काल के लिए नहीं है। तो हर सीन बदलती ही रहती है, हम समझे कि यही सीन हमारी सदा काल की रहे जो सुखद पले हैं, लेकिन कब ऐसी परिस्थिति आए तो उसके लिए हमें अपने जीवन को इतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी परिस्थिति आए तो हम अडिग रहे, हम टूट न जाए, तो ऐसी परिस्थिति हमें लानी है। फिर हर किसी का अपना अपना समय होता है, जैसे कहते हैं ना कि ये दस साल उसका बहुत अच्छा था, किसी का 10 साल बहुत अच्छा होता है, ऐसे हर एक का अपना अपना समय होता है। अब जिसका समय अच्छा होता है उसके लिए तो अच्छा ही है ना, और दूसरा उसको देख करके कहते हैं कि देखो, लेकिन उनको मालूम नहीं तुम्हारा भी तो 10 साल ऐसे गया था अच्छा। हर एक के जीवन में बाबा हर एक को चांस देता है कि अपना जीवन को अच्छी रीति से सफल कर दे। तो हर किसी का अपना अपना समय होता है, तो हर चीज अपने अपने समय एक्यूरेट भी होती है, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट होती है। जैसे सूर्य देखो अपने समय पर सब काम करता है और चांद भी, तो ये दोनों एक दूसरे की जरा भी ईर्ष्या नहीं करता है कि काम अलग अलग है, यहाँ भी सबका काम अलग अलग, लेकिन एक दूसरे के काम में कितनी टांग अड़ाता है। जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं होगा और कंस्ट्रक्शन का काम चलता है ना, उसमें जो किचन वाले होंगे वो वाले होंगे, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, और कंस्ट्रक्शन वाले जो होंगे कहीं वाले होंगे किचन में जो काम करते हैं, आपने ऐसा कैसे बनाया, वो कैसे बनाया। तो हर एक का अपना अपना काम होता है, हर एक के काम में कभी भी हमको डिस्टर्बेंस नहीं करना है कि भाई तुम ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों। और कारपेंटरी में जा करके बोलेंगे कि आप लोगों को तो ऐसा बनाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, हमको बोलते हैं कि आपका टेलीफोन में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई तुम किचन में काम करता है, तुम अपना संभालो ना, है ना। तो हर एक को यहाँ सभी इंजीनियर भी बन जाता है तो सब कुछ बन जाते हैं, ऑलराउंडर है यहाँ। हाँ, कुछ किसी को कुछ भी नहीं आता होगा तभी भी, है ना, ऑफिसों के लिए बराबर उसको गाइडेंस करेगा कि तुमको ऐसी फाइल रखनी चाहिए, तुम्हारे को ऐसी फाइल, भाई उनको पता है ना कैसे रखना चाहिए। कोई डॉक्टर्स को भी अपनी राय देने जाते हैं वो ऐसे करना चाहिए, आप हमको ऐसी ही दवाई दो, हमको ऐसे ही, अल्लाह भाई तुमको पता है वो तो डॉक्टर बन के बैठा है। तो कहने का मतलब कि सभी को अपना अपना होता है, हर एक व्यक्ति का अपना ज्ञान योग पुरुषार्थ है। तो यहाँ क्या होता है, कोई कोई को देखते हैं गुप्त पुरुषार्थी होते हैं, इतना गुप्त रीति से अपना पुरुषार्थ करते हैं, और कोई कोई होते हैं ना तो अच्छी रीति से पुरुषार्थ करते हैं, उनको भी जाके कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, और ज्ञान होगा आपको इतने ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। अरे हर एक का अपना अपना समय होता है, हर एक का अपना अपना ज्ञान पढ़ने का, मूल्य पढ़ने का, अपना अपना चिंतन करने का एक समय होता है। लेकिन हमें किसी को भी, हाँ एक गाइड करना जरूरी है, लेकिन उसको इसको उसके पर जबरदस्ती से चलाना मुश्किल है, वो नहीं कर सकते। इसलिए हर एक का व्यक्ति का ज्ञान योग का पुरुषार्थ, हम समझे कि ये तो पुरुषार्थ करता ही नहीं है, अरे वो क्या पुरुषार्थ करता है आपको पता है, करता है ना, तो हमको दिखाई दे तभी पुरुषार्थ है। कोई तो है ना घंटे घंटे भर आपने देखा होगा कि योग रूम में बैठे ही रहे। तो कहने का मतलब कि कोई कोई ऐसे प्रकार का योग करते हैं, तो मेडिटेशन जो भी करते हैं जहां भी करते हैं, लेकिन हमें उसको भी मतलब कि, कहने का मतलब कि ऐसे जहां का है वहां भी, वहां ऐसा ही करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि सभी का, यहाँ जब भी नए नए आते हैं ना, तो ये तो बाबा की जो मूल्यां चली है ना पुरानी, तो मैं फरिश्तापन की, तो पूरी फरिश्तापन की बाबा ने पूरी मूल्यां चलाई। अब एक फरिश्तापन आएगा उसका शब्द का तो मालूम नहीं होगा कि फरिश्ता क्या है क्या नहीं, दो चार डेफिनेशन सुन ली तो उसका ज्ञान फिर इतना ही होगा, और जो बहुत चिंतन करता है उसका ज्ञान बहुत ही बहुत अच्छा होगा। अभी वो हम उसको क्या कंपैरिजन करेंगे, उसकी उसका अपना अपना है, उसको कितना भी बोलने की कोशिश करो, कितना भी समझाने की कोशिश करो, वहां तक ही सीमित है। तो हर किसी की समझ भी अपनी अपनी है। कोई कोई कहता है कि यहाँ जो जो भी कहता कि जो भी कोई कोई ऐसा कहता है कि यहाँ जो मिलता है ना वो हमारी स्थिति ऐसी है ना, इसलिए हमारे को अच्छी चीजें मिलती है। और कोई कोई कहता है कि यहाँ बहुत लेंगे ना तो वहां कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना कई बार कि देखो यहाँ जितना सुख लेंगे, जितना आप इकट्ठा करोगे वहां उतना कम हो जाएगा। तो उसका अपनी समझ है। कोई कोई कहता है कि अपनी जेब से क्या जाता है, यज्ञ में से ही तो जाता है, उसमें क्या है, ले लो तो उसका भी तो वहां कम हो जाएगा, उसको अंदर ये नहीं है। और कोई कोई कहता है कि बोझ अपने पर चढ़ेगा, यज्ञ पर बोझ माना मेरे पर बोझ, क्योंकि मैं मेरे लिए मैं ले रही हूं। तो ये बहुत कुछ अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी बुद्धि होती है। तो जैसे आप जैसे हम बुद्धि से जैसे समझ से करेंगे वैसा हमको फल भी मिलेगा, है ना। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, फिर जो करेगा सो पाएगा और उसी अनुसार ही पाएगा, जो करेगा सो पाएगा और उसी अनुसार ही पाएगा। जो ज्ञान योग धारणा सेवा युक्ति युक्त करते हैं और तपस्या और त्याग उसके जीवन में है, तो किसी को दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन बाबा तो सभी की कर्म की फिलोसफी को जानते हैं, कर्म को जानते हैं, करेगा जैसे करेगा, कोई कोने में बैठ करके बहुत अच्छे अच्छे कर्म करेगा, किसी को दिखाई दे या नहीं दिखाई दे तो भी उसको कर्म का फल अच्छा मिलेगा, और कोई कोने में जा करके पाप कर्म करेगा, भले कोई उसको देखे ना देखे लेकिन फिर भी उसका फल उसको ऐसे ही मिलेगा। तो जैसा करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा, आज नहीं तो कल, कभी भी तो मिलेगा। तो जो करेगा सो पाएगा, हम जैसा करेगा जिस अनुसार करेगा वैसा ही हमको मिलेगा। तो रिस्क करने से, कोई किसी के रिस्क करने से ऐसा नहीं कि हम उसकी बहुत रिस्क करते हैं तो उसका सारा सामान हमको मिल जाएगा, नहीं। तो रिस्क करने से कुछ होता नहीं है। रिस्क करने से हमारे में कोई किसी का कुछ जमा नहीं होगा कि हम उसकी बहुत परचिंतन करेंगे, निंदा करेंगे तो उसके सारे ते सारे लोग हमको बहुत पसंद करेंगे, वो बात नहीं है। तो बाबा का हर बच्चे का लक्ष्य है कि हमें फर्स्ट नंबर लाना है। किसी को बाबा कहते हैं ना, भरी सभा में कहते हैं कि कौन लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो सभी हाथ उठाते हैं। राम सीता के लिए कोई हाथ नहीं उठाते, लेकिन राम सीता भी तो बनेंगे ना, त्रेता में तो जाएंगे सतयुग के बाद, लेकिन कोई हाथ नहीं उठाते। अगर लक्ष्मीनारायण में हाथ उठाते तो बाबा कहते कि फिर अपने को लायक बनाया है, क्योंकि लक्ष्मीनारायण का पद इतना बड़ा ऊंचा है। बाबा इनके तो इतने सारे पाठधारी में सबसे ऊंचे थे, ऊंचा पाठ किसका है, लक्ष्मीनारायण का है। तो वैसा बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, फर्स्ट नंबर ब्रह्मा बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, इतनी मेहनत करने के बाद नंबर आया। नहीं तो उनको पहले से ही पता था कि मैं नारायण बनने वाला हूं, लेकिन फिर भी बाबा ने पुरुषार्थ किया। अगर यहाँ किसी को मालूम पड़ जाए कि आपको ये बनने वाले हो तो बैठ जाएंगे, अरे बनने वाले ही है ना, क्या पुरुषार्थ करना है, हम तो बन हाँ। तो इसी रीति से तो ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। ड्रामा की जो भी सीन हमारे सामने आती है वो सारी शिक्षा देने के लिए आती है, हमको सुधारने के लिए आती है, हमको उच्च पद प्राप्त कराने के लिए आती है। इसलिए कोई भी सीन आती है तो बाबा कहते हैं कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। हमारे लिए ड्रामा में जो कल्याण है, जैसा कल्याण है उसी सीन हमारे सामने आती है, तो हमें स्वीकार करनी चाहिए। और स्वीकार करने के बाद अपने अंदर भी देखना है, और स्वीकार करने के बाद हमारे को क्यों क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन बाबा के ऊपर अटल निश्चय, हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा में अटल निश्चय रख करके पूरे पूरी सेवा करनी है। जो हो रहा है वही अच्छा ही होगा, है ना, बाबा कहते हैं जो हो रहा है वो भी अच्छा और आने वाला भी अच्छा होगा। कल्याणकारी समय चल रहा है तो बाबा कहते हैं कि कल्याणकारी समय चलता है तो हमें अपना ऊपर पूरी पूरा ध्यान देना है, क्योंकि अभी समय बहुत आगे जा रहा है, हमारा पुरुषार्थ थोड़ा उसे कम चल रहा है, इसलिए दोनों को सिमिलर चलाना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने को तो बहुत लोगों को बहुत बार देखा, 2500 साल तक लोगों को देखा, और इस संगम में भी बहुत लोगों को देखा। अभी थोड़ा सा समय ही अपने ऊपर थोड़ा अटेंशन रखे, और अपने पर अटेंशन रख करके अपने को आगे जाने का पुरुषार्थ करें। किसी को देखेंगे तो जो व्यक्ति है ना वो उसको देखेंगे तो हमारी पड़ती कला चढ़ती कला नहीं होंगी, गिरती कला में हम आ जाएंगे। और नंबर वाइज तो है ना, बाबा कहते हैं कि पहली माला का नंबर को दूसरी माला का नंबर को सिमिलर, दूसरे को तीसरे के, ऐसे ये जो भी मालाएं बनेगी वो माला का पहला नंबर होगा, दूसरा नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा, ऐसे तो माला बनेगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर हम किसी की कमजोरी देखेंगे तो हमारा नंबर तो बहुत पीछे चला जाएगा, इसलिए हमें ये सब कुछ नहीं करते, अपने को ही देखना है और अपने की कमियां देखना है और कमियां भरने की है। इसलिए हमको बाबा ने लक्ष्य दिया है कि उसको सामने देखते रहो, उसको देखो और अपने को देखो क्या क्या भरना बाकी रहा है। ओम शांति।
का है मन में, मार सके ना फिर काहे का। यह देह तू इसका रतवान, तेरे साथ चलेगा भगवान, तेरे साथ चलेगा भगवान। कोई नहीं है फिर काहे मन में, मार सके ना फिर काहे का। यह देह तू इसका रतवान, तेरे साथ